मैंने खुदावंद को देखा है। अलमसीह जी उठता है। योहन्ना की अंजील 20। ईसा मसीह ने मरने से पहले फरमाया था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। उसके शागिर्द ऐसी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जब उसे सचमुच कत्ल किया गया तो वो सख्त घबरा कर छुप गई। उनके सारे सपने धूल में मिलाए गए थे। अब क्या करें? आइए हम इस नाते से कुछ बातों पर ध्यान दें। पहली बात, औरतों की मर्दानगी। औरतों की मर्दानगी। जुमे के दिन ईसा मसीह को दफनाया गया। हफ्ते का दिन खामोशी से गुजर गया, क्योंकि उस दिन काम करना मना था। फिर इतवार का दिन शुरू हुआ। अभी अंधेरा ही था कि कुछ शागिर्द अपने घरों से खिसक कर कब्र के लिए रवाना हुए। क्या उनमें पतरस और दूसरे बुजुर्ग शामिल थे? नहीं, सिर्फ औरतों में वहां जाने की हिम्मत थी। कैसी बात! वो क्यों कब्र के पास जाना चाहती थी? वो लाश पर खुशबूदार मसाले लगाना चाहती थी। लेकिन कब्र पर लंबा चौड़ा पत्थर पड़ा था, वो किस तरह उसे हटा सकती थी? देखो इन औरतों की उम्मीद और जुरत। वो तो जानती थी कि हम पत्थर को हटा नहीं सकती, फिर भी वो एक आखिरी बार अपने उस्ताद और आका की इज्जत और एहतराम करना चाहती थी। इसके लिए वो फौजियों और मुखालिफों का सामना करने के लिए भी तैयार थी। पत्थर को किस तरह हटाएंगी? हमको मालूम नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी गहरी मोहब्बत हमें वो करने के लिए उभार रही है। दूसरी बात, खाली कब्र। खाली कब्र। इन औरतों में से एक मरियम मगदलेनी थी। कब्र शहर की चारदीवारी से बाहर थी। चलती चलती वो अंधेरे में कब्र तक पहुंच गई। लेकिन ये क्या था? वो सख्त घबरा गई। कब्र के मुंह पर का पत्थर एक तरफ हटाया गया था। ये क्या गड़बड़ थी? मरियम सर पर पांव रखकर सीधे पत्रस और योहन्ना के पास दौड़ आई। वो चिल्लाई, वो खुदावंद को कब्र से ले गई हैं और हमें मालूम नहीं कि उन्होंने उसे कहां रख दिया है। क्या मरियम ने देखा था कि किसी ने लाश को छीन लिया था? नहीं। जब इंसान सख्त परेशान हो जाता है तो कई बार वो गलत नतीजा निकालता है। मरियम ने अंधेरी कब्र में झांका तक नहीं था, बस एक वहम उसके सर पर सवार हो गया था। शायद उसे पहले से डर था कि कोई लाश को ले जाएगा। तीसरी बात, योहन्ना का ईमान। योहन्ना का ईमान। ये सुनते ही पत्रस और योहन्ना एकदम घर से निकले। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन योहन्ना ज्यादा तेज था। वो पहले कब्र पर पहुंच गया। उसने झुककर अंदर झांका तो कफन की पट्टियां वहां पड़ी नजर आईं, लेकिन वो अंदर ना गया। फिर पत्रस पहुंचकर कब्र में दाखिल हुआ। उसने भी कफन की पट्टियां वहां पड़ी देखीं। जिस कपड़े में लाश का सर लिपटा हुआ था वो तह करके पट्टियों से अलग पड़ा था। फिर योहन्ना भी अंदर गया। जब उसने ये देखा तो वो ईमान लाया। देखने पर वो ईमान लाया, इसका क्या मतलब है? रस्म के मुताबिक पूरी लाश को कपड़े के एक टुकड़े में लपेटा गया था, फिर हाथों को एक पट्टी से जिस्म के साथ जकड़ा गया था, जबकि दूसरी पट्टी से पांव को बांधा गया था। बड़े कपड़े के अलावा सर को एक अलग कपड़े से लपेटा गया था। अब कफन जूं का तू वहां पड़ा था। मतलब है, जब ईसा मसीह जी उठा तो उसका जिस्म आसमानी जिस्म था और उसे कफन को उतारने की जरूरत नहीं थी। जिस्म कफन में से निकल गया और कपड़ा जूं का तूं पड़ा रहा, लेकिन सर का कपड़ा अलग करके रखा गया था। यही वजह है कि योहन्ना ईमान लाया। वो समझ गया कि अगर लुटेरे लाश को लूटते तो वो कफन पीछे ना छोड़ते। ईसा मसीह सचमुच जी उठा है, लेकिन पत्रस अब तक शक में उलझा रहा। कलामी मुकदस ने इसकी पेशगोई की थी, साथ साथ ईसा मसीह ने शागिर्दों को ये बात बार बार बताई थी। फिर भी शागिर्द अब तक ये पेशगोई नहीं समझते थे कि उसे मुर्दों में से जी उठना है। अब क्या करें? पत्रस और योहन्ना हैरानी के आलम में घर वापस चले गए। चौथी बात, मरियम से नरमी। मरियम पत्रस और योहन्ना के साथ वापस न चली। वो रो रो कर कब्र के सामने खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने रोते हुए झुक कर कब्र में झांका तो क्या देखती है? दो फरिश्ते सफेद लिबास पहने हुए वहां बैठे हैं जहां पहले लाश पड़ी थी, एक उसके सिरहाने और दूसरा उसके पैंताने। उन्होंने मरियम से पूछा, ए खातून, तू क्यों रो रही है? सवाल में नरमी सी झिड़की थी, मतलब है तुझे रोने की क्या जरूरत है? मरियम ने कहा, वो मेरे खुदावंद को ले गए हैं और मालूम नहीं कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। फिर उसने पीछे मुड़कर ईसा मसीह को वहां खड़े देखा, लेकिन उसने उसे ना पहचाना। उसने उसे क्यों नहीं पहचाना? शायद वो अपने आंसुओं के बायस सही नहीं देख सकती थी। वैसे भी पिछली बार उसने ईसा मसीह को मुर्दा हालत में देखा था, वो किस तरह यहां खड़ा हो सकता था? ईसा मसीह ने पूछा, ए खातून, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है? हमारे आका का कितना नरम सवाल। उसने उसे सख्त झिड़की ना दी, उसने उसकी आंखों को बड़ी नरमी और सब्र से खोल दिया। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें ईमान लाने पर मजबूर नहीं करता, वो हमें बड़ी नरमी से सही इल्म और आजादी तक ले जाता है। ये सोचकर कि वो माली है, मरियम ने कहा, जनाब, अगर आप उसे ले गई हैं तो मुझे बता दें कि उसे कहाँ रख दिया है, ताकि उसे ले जाऊं। ईसा मसीह ने उससे कहा, मरियम, उसकी आवाज से कितना प्यार टपक रहा था। अच्छा चरवाहा बड़े रहम और मोहब्बत से अपनी बदहवास और उलझन में पड़ी हुई भेड़ को सही पटरी पर लाता है, आपको भी और मुझको भी। वो जालिम नहीं है जिसे डंडा पकड़े हमें कुचल डालने का मजा आए। ये सुनकर मरियम उसकी तरफ मुड़ी और बोल उठी, रब्बूनी, यानी उस्ताद। एक पांचवी बात, आसमानी घर तैयार है। भेड़ अपने चरवाहे की आवाज सुनती है। मरियम का दिल एकदम मोहब्बत और खुशी से भर गया। पिछले दिनों में दुनिया बेमकसद और हौलनाक हो गई थी। सर पर काले काले बादल और घुप अंधेरा छा गया था, लेकिन अब एकदम सूरज तलू हुआ। परिंदे चहचहाने लगे, दिल खुशी से नाचने लगा। ईसा मसीह ने कहा, मेरे साथ चिमटी ना रह, क्योंकि अभी मैं ऊपर बाप के पास नहीं गया, लेकिन भाइयों के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास वापस जा रहा हूँ, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास। मरियम को क्यों कहा गया कि मेरे साथ चिमटी ना रह? ईसा मसीह अपने बाप के पास वापस जा रहा था, लेकिन पहले कई एक जरूरी काम बाकी रह गए थे, अब चिमटी रहने का वक्त नहीं था। उसने फरमाया कि भाइयों के पास जा, ये भाई कौन थे? भाई से मुराद उसके शागिर्द थे। पहले वो उन्हें भाई नहीं पुकारता था, अब क्यों? अपनी मौत और जी उठने से उसने गुनाह और मौत पर फतह पा ली थी। इस फतह की बुनियाद पर इंसान के लिए एक आसमानी घर तैयार हो गया था, ऐसा घर जिसमें हर एक भाई बहन बराबर है। वो क्यों फरमाता है कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास वापस जा रहा हूं, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास? जो आसमानी घर तैयार हुआ था वो खुदा ही का घर था। मतलब है, गुनाह और मौत पर फतह पाने से ईसा मसीह ने ईमानदार को अपना घर वाला बना दिया था। जो भी ईमान लाए वो इस घराने का भाई या बहन बन जाता है। ईसा मसीह पहले से फरमा चुका था कि अब से तुम मेरे दोस्त हो। उसकी मौत और जी उठने से ये बात पूरी हुई। ईसा मसीह की ये बात सुनकर मरियम मगदलेनी शागिर्दों के पास गई। वो फूली ना समाई। वो बोली, मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। खिदमत के शुरू में मसीह ने शागिर्दों को फरमाया था कि आओ और खुद देख लो। वो चाहता था कि लोग सोच समझ कर उस पर ईमान लाएं। वो चाहता था कि ईमान से एक गहरा घरेलू ताल्लुक कायम हो जाए। अब जी उठने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। पहले योहन्ना खाली कफन को देखकर ईमान लाया, फिर मरियम ईसा मसीह को देखकर ईमान लाई। ये ईमान खोखला नहीं था। ये ईमान किसी फर्जी कहानी पर मबनी नहीं था। ये देखने, सुनने, छूने से कायम हुआ था। अब शागिर्दों की बारी आए। छठी बात, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी सलामती हो। उस इतवार की शाम को शागिर्द जमा थे। उन्होंने दरवाजों पर ताले लगा दिए थे क्योंकि वो सख्त डरे हुए थे। अचानक ईसा मसीह उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। वो किस तरह आ खड़ा हुआ? क्या दरवाजे पर ताला नहीं लगा था? अब उसका आसमानी जिस्म था। जी उठते वक्त उसे कफन को उतारने की जरूरत नहीं थी। अब वो जगह और वक्त का पाबंद नहीं रहा था। उसने फरमाया, तुम्हारी सलामती हो। उसने ये क्यों कहा? उसकी मौत और जी उठने का मकसद तो यही था कि इंसान को सलामती हासिल हो, कि उसका खुदा से ताल्लुक बहाल हो जाए। फिर उसने उन्हें अपने हाथों और पहलू को दिखाया। उसने अपने हाथों और पहलू क्यों उनको दिखाया? अब तक हाथों में कीलों का निशान था। अब तक पहलू में उस जख्म का निशान था जिससे खून और पानी बह निकला था। खुदावंद को देखकर शागिर्द नहायत खुश हुए। उसे देखकर वो क्यों खुश हुए? वो भूत प्रेत नहीं था। बेशक उसका जिस्म आसमानी था, मगर जिस्म ही था। उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। जिससे जुदा होने पर वो बड़ी मायूसी और घबराहट में उलझ गए थे, वो दोबारा आ गया था। अच्छा चरवाहा वापस आ गया था। एक सातवीं बात, आसमानी घर की खुली दावत। आसमानी घर की खुली दावत। ईसा मसीह ने दोबारा कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, उसी तरह मैं तुमको भेज रहा हूं। खुदा बाप ने अपने फरजंद को कहां भेजा था? उसने उसे दुनिया में भेजा था। उसने उसे क्यों भेजा था? इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को एक दावत दे। ये दावत कि मैं तुम्हारे लिए एक आसमानी घर तैयार कर रहा हूं। तौबा करके मुझ पर ईमान लाओ ताकि तुम मेरे घर वाले बन जाओ। ये आसमानी घर किस तरह कायम हुआ? ये आसमानी घर ईसा मसीह की गुनाह और मौत पर फतह से कायम हुआ। जो भी तौबा करके उस पर ईमान लाए उसे अपने गुनाहों की मुआफी मिलती है और वो उसका घर वाला बन जाता है। अब ईसा मसीह चाहता है कि शागिर्द दावत देने का ये सिलसिला जारी रखें। वो कौन सी दावत दें? ये दावत के ईसा मसीह ने आसमानी घर तैयार कर रखा है, इसलिए तौबा करो, ईसा मसीह पर ईमान लाओ ताकि तुम भी उसके घर वाले बन जाओ। फिर उन पर फूंक कर मसीह ने फरमाया, रूहुल कुद्स को पालो, अगर तुम किसी के गुनाहों को मुआफ करो तो वो मुआफ किए जाएंगे, और अगर तुम उन्हें मुआफ ना करो तो वो मुआफ नहीं किए जाएंगे। फूंकने से ईसा मसीह ने क्या जाहिर किया? उसने उस वाकये की तरफ इशारा किया जो उसके आसमान पर उठा लिया जाने पर हो जाएगा। उस वक्त रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होगा और रूहुल कुद्स में मसीह खुद हाजिर होगा, इसीलिए उसने फूंक कर ये बात फरमाई। यही रूह पाने से शागिर्दों को वो ताकत मिलेगी कि वो मसीह की दावत दुनिया के कोने कोने तक सुना सकेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अब से शागिर्दों को मुआफ करने का इख्तियार हासिल है? अब से शागिर्दों की अव्वल जिम्मेदारी ये होगी कि वो सबको मसीह का घर वाला बनने की खुली दावत दें। इसी के लिए उनको भेजा जा रहा है। इस दावत की सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे गुनाहों को मुआफ किए जाएंगे अगर तुम तौबा करके मसीह पर ईमान लाओ। अगर सुनने वाले ये दावत कबूल करें तो क्या होगा? उनके गुनाहों को माफ किया जाएगा। और अगर सुनने वाले ये दावत कबूल ना करें तो क्या होगा? उनके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। ईसा मसीह यही बात फरमा रहा है, जो ये दावत कबूल करे उसके गुनाहों को माफ किया जाएगा और वो मेरा घर वाला बन जाएगा, वरना नहीं। आठवीं बात, तोमा का शक। तोमा का शक। ईसा मसीह के आने पर तोमा रसूल मौजूद ना था। बाद में दूसरे शागिर्दों ने उसे बताया, हमने खुदावंत को देखा है, लेकिन तोमा ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, पहले मुझे उसके हाथों में कीलों के निशान नजर आए और मैं उनमें अपनी उंगली डालूं, पहले मैं अपने हाथ को उसके पहलू के जख्म में डालूं, फिर ही मुझे यकीन आएगा। नवी बात, मसीह का तजर्बा करो। मसीह का तजर्बा करो। क्या तोमा की शक वाली बात गलत थी? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि ईसा मसीह मरकर दफनाया गया था। अब वो अपनी आंखों से मसीह को देखना, अपने हाथों से उसे छूना चाहता था। ये बुरी बात नहीं है। आज भी जरूरी है कि मसीह हमारे दिलों में बसे, कि हम रोजाना उसका तजर्बा करें। क्या आपको ईसा मसीह का तजर्बा हुआ है? दसवीं बात, मसीह की हकीकत जान लो। मसीह की हकीकत जान लो। तोमा रसूल एक बात पर जोर देता है जो ईमान की बुनियाद है। बात यह है कि ईसा मसीह और जो कुछ उसने हमारे वास्ते किया है वो एक ठोस हकीकत है। तोमा कहता है, मैं हकीकत को जानना चाहता हूं, किसी फर्जी बात पर भरोसा करने का क्या फायदा है? क्या आप हकीकत को जानना चाहते हैं? एक ग्यारहवीं बात, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। एक हफ्ता गुजर गया, शागिर्द दोबारा मकान में जमा थे। इस मर्तबा तोमा रसूल भी साथ था। इस बार भी दरवाजों पर ताले लगे थे, फिर भी ईसा मसीह उनके दरमियान आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर वो तोमा से मुखातिब हुआ, बोला, अपनी उंगली को मेरे हाथों और अपने हाथ को मेरे पहलों के जख्म में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि ईमान रख। ईसा मसीह तोमा रसूल का शक जानता था, फिर भी उसने उसे झिड़की ना दी। उसने उससे खुली दावत दी कि आजा, चेक कर कि मैं सचमुच ईसा मसीह हूं। ईसा मसीह अंधे शागिर्द नहीं चाहता, वो ऐसे शागिर्द चाहता है जो सोच समझ कर शागिर्द बन जाएं। उसे देखकर तोमा ने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तोमा का शक एकदम काफूर हो गया और उसने पहचान लिया कि ईसा मसीह कौन है। वो मेरा खुदावंद, हाँ मेरा खुदा है। क्या ईसा मसीह ने कहा कि ऐसी बात मत बोल? नहीं, ना उसने ये कहा ना दूसरे शागिर्दों ने। क्यों? इसलिए कि ईसा मसीह खुदा का फर्जंद है। वो तसलीस का दूसरा अकनूम है। लेकिन ध्यान दो, तोमा कहता है कि मेरे खुदावंद, मेरे खुदा। वो क्यों मेरा खुदावंद, मेरा खुदा कहता है? वो मेरा चरवाहा है जिसने अपनी जान मेरी खातिर दी, जो पूरे तौर से खुदा भी है और पूरे तौर से इंसान भी। उसने अपनी कुर्बानी से मुझे गुनाह और मौत के चंगुल से छुड़ाया। अगर वो सिर्फ खुदा होता तो वो मेरी जगह ना मर सकता, और अगर वो सिर्फ इंसान होता तो मुझे उसकी मौत से कोई मतलब ना होता। तोमा रसूल एकदम ये समझ गया और उसका दिल खुशी और एहतराम से भर गया। इस भेड़ ने अपने चरवाहे की आवाज सुन ली थी। ईसा मसीह बोला, क्या तू इसलिए ईमान लाया है कि तूने मुझे देखा है? मुबारक है वो जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाते हैं। एक आखिरी बात, ईमान क्या है? ईमान क्या है? ईसा मसीह की ये बात हमें दोबारा ये सोचने पर मजबूर करती है कि ईमान क्या है। क्या ईमान एक बैज है जिससे मैं दिखाता हूं कि मैं किस स्कूल या पार्टी का मेंबर हूं? या क्या ईमान रखने का मतलब ये है कि मैं खास रसूमात अदा करूं? नहीं, ईमान अच्छे चरवाहे पर भरोसा है, उस चरवाहे पर जिसने अपनी जान कुर्बान करके मुझे अपना घर वाला बना दिया है। इस पर जोर देने के लिए यूहन्ना फरमाता है कि ईसा मसीह ने मजीद बहुत से ऐसे इलाही निशान दिखाए जो मैंने बयान नहीं किए, लेकिन जितने बयान किए हैं उनका मकसद ये है कि आप ही मान लाएं कि ईसा ही मसीह यानी अल्लाह का फर्जंद है, और आपको इस ईमान के वसीले से उसके नाम से जिंदगी हासिल हो। जो मोजज़े और इलाही निशान बयान किए गए हैं उनका क्या मकसद है? उनका मकसद ये है कि सुनने वाला ईमान लाए कि ईसा ही मसीह है, कि वो अल्लाह का फर्जंद है, क्योंकि यही जानने से इंसान को अबदी जिंदगी हासिल होती है। यही पूरी इंजील का मकसद है कि हर इंसान अच्छे चरवाहे की भेड़ और घर वाला बन जाए। क्या आप अच्छे चरवाहे की भेड़ हैं? क्या आप उसके घर वाले बन गए हैं? यूहन्ना की इंजील 20। हफ्ते का दिन गुजर गया तो इतवार को मरियम मगदलेनी सुबह सवेरे कब्र के पास आई। अभी अंधेरा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कब्र के मुंह पर का पत्थर एक तरफ हटाया गया है। मरियम दौड़कर शमाउन पत्रस और ईसा को प्यारे शागिर्द के पास आई। उसने अतला दी, वो खुदावंद को कब्र से ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कि उन्होंने उसे कहां रख दिया है। तब पत्रस दूसरे शागिर्द समेत कब्र की तरफ चल पड़ा। दोनों दौड़ रहे थे, लेकिन दूसरा शागिर्द ज्यादा तेज रफ्तार था। वो पहले कब्र पर पहुंच गया। उसने झुक कर अंदर झांका तो कफन की पट्टियां वहां पड़ी नजर आईं, लेकिन वो अंदर ना गया। फिर शमाउन पत्रस उसके पीछे पहुंचकर कब्र में दाखिल हुआ। उसने भी देखा कि कफन की पट्टियां वहां पड़ी हैं और साथ वो कपड़ा भी जिसमें ईसा का सर लिपटा हुआ था। ये कपड़ा तह किया गया था और पट्टियों से अलग पड़ा था। फिर दूसरा शागिर्द जो पहले पहुंच गया था वो भी दाखिल हुआ। जब उसने ये देखा तो वो ईमान लाया, लेकिन अब भी वो कलामी मुकद्दस की ये पेशगोई नहीं समझते थे कि उसे मुर्दों में से जी उठना है। फिर दोनों शागिर्द घर वापस चले गए, लेकिन मरियम रो रो कर कब्र के सामने खड़ी रही और रोते हुए उसने झुक कर कब्र में झांका तो क्या देखती है कि दो फरिश्ते सफेद लिबास पहने हुए वहां बैठे हैं जहां पहले ईसा की लाश पड़ी थी, एक उसके सिरहाने और दूसरा वहां जहां पहले उसके पांव थे। उन्होंने मरियम से पूछा, ए खातून, तू क्यों रो रही है? उसने कहा, वो मेरे खुदावंद को ले गए हैं और मालूम नहीं कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। फिर उसने पीछे मुड़कर ईसा को वहां खड़े देखा, लेकिन उसने उसे ना पहचाना। ईसा ने पूछा, ए खातून, तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढ रही है? ये सोचकर कि वो माली है, उसने कहा, जनाब, अगर आप उसे ले गई हैं तो मुझे बता दें कि उसे कहाँ रख दिया है ताकि उसे ले जाऊं। ईसा ने उससे कहा, मरियम। वो उसकी तरफ मुड़ी और बोल उठी, रब्बूनी। इसका मतलब रामी जबान में उस्ताद है। ईसा ने कहा, मेरे साथ चिमटी ना रह, क्योंकि अभी मैं ऊपर बाप के पास नहीं गया, लेकिन भाइयों के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास वापस जा रहा हूँ, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास। चुनांचे मरियम मगदलेनी शागिर्दों के पास गई और उन्हें इत्तला दी, मैंने खुदावंत को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कहीं। उस इतवार की शाम को शागिर्द जमा थे। उन्होंने दरवाजों पर ताले लगा दिए थे क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। अचानक ईसा उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी सलामती हो, और उन्हें अपने हाथों और पहलू को दिखाया। खुदावंत को देखकर वो नहायत खुश हुए। ईसा ने दोबारा कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुमको भेज रहा हूं। फिर उन पर फूंक कर उसने फरमाया, रूहुल कुद्स को पालो, अगर तुम किसी के गुनाहों को मुआफ करो तो वो मुआफ किए जाएंगे, और अगर तुम उन्हें माफ ना करो तो वो मुआफ नहीं किए जाएंगे। 12 शागिर्दों में से तोमा, जिसका लकब जुड़वा था, ईसा के आने पर मौजूद ना था। चुनांचे दूसरे शागिर्दों ने उसे बताया, हमने खुदावंद को देखा है। लेकिन तोमा ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, पहले मुझे उसके हाथों में कीलों के निशान नजर आए और मैं उनमें अपनी उंगली डालूं, पहले मैं अपने हाथ को उसके पहलू के जख्म में डालूं, फिर ही मुझे यकीन आएगा। एक हफ्ता गुजर गया। शागिर्द दोबारा मकान में जमा थे। इस मर्तबा तोमा भी साथ था। अगरचे दरवाजों पर ताले लगे थे, फिर भी ईसा उनके दरमियान आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर वो तोमा से मुखातब हुआ, अपनी उंगली को मेरे हाथों और अपने हाथ को मेरे पहलू के जख्म में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि ईमान रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। फिर ईसा ने उसे बताया, क्या तू इसलिए ईमान लाया है कि तूने मुझे देखा है? मुबारक है वो जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाते हैं। عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں مزید بہت سے ایسے الہی نشان دکھائے جو اس کتاب میں درج نہیں ہیں، لیکن جتنے درج ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہی مان لائیں کہ عیسیٰ ہی مسیح یعنی اللہ کا فرزند ہے، اور آپ کو اس ایمان کے وسیلے سے اس کے نام سے زندگی حاصل ہو۔